हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अमित जैसे ही काव्या को उठाने के लिए आगे बढ़ा, मल्लिका पहले ही उसे उठा चुकी थी। उसके पैरों में थोड़ी राहत आई थी और लॉकेट उठाकर अमित को एक अजीब सी अनुभूति हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो अमित का गला घुटन से भर गया हो और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। और जैसे ही काव्या ने अर्ध खुली आंखों से अमित के हाथों में लॉकेट देखा, उसकी सांसें थम सी गईं और वो थोड़ा आगे बढ़ी, क्योंकि काली शक्तियों के मालिक के हाथों में वो लॉकेट आते ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका जोरों से गला दबा दिया हो। ये बात काव्या देख चुकी थी, इसीलिए उसने जल्दी से आगे बढ़कर लॉकेट काली शक्तियों के मालिक के हाथों से ले लिया। ये मेरा है, नीचे गिर गया था, उसने कहा और जल्दी से लॉकेट अपने गले में पहन लिया। मल्लिका और अमित दोनों काव्या के इस अचानक हरकत से हैरान रह गए। वो ऊपर से काफी घायल थी, लेकिन उसने लॉकेट तुरंत अमित के हाथों से छीन लिया था। ये बात अब दोनों को अजीब लगी और वे सोचने लगे कि आखिरकार इस लॉकेट में ऐसा क्या था कि जिसे छूने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका गला दबाया जा रहा हो। तभी एक हॉस्पिटल की एम्बुलेंस वहां रुक गई। एक्सीडेंट होते देख भीड़ में से किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया था, क्योंकि ऑटो ड्राइवर को काफी चोट आई थी और उसे जल्दी ही अस्पताल ले जाया गया। लेकिन काव्या को जल्दी से बगीचे में पहुंचना था, क्योंकि तारापरी किसी भी पल वहां पहुंच सकती थी और तारापरी के आते ही उसके अंदर जिन्नातों के वंशज को बालना था। लेकिन उस वक्त काव्या वहां से नहीं निकल सकती थी, क्योंकि मल्लिका और अमित दोनों उसे घूर रहे थे। मजबूरन उसे भी एम्बुलेंस में बैठना पड़ा, क्योंकि काव्या को भी चोट आई थी। कम से कम जिन्नातों का वंशज उसके साथ था, इस बात की उसे तसल्ली थी। जल्दी ही गाड़ी अस्पताल की ओर रवाना हो गई। वहीं दूसरी ओर अमन अपनी माँ और पिता अमरेंद्र जी के साथ जल्दी ही हवेली के लिए रवाना हो चुका था। वहां जाकर उसे सातों जादुई बावर्चियों को बुलाना था और उनमें से उस बावर्ची का पता लगाना था जिसने अपने एक जिन को इंसानी मांस खाने की आदत लगाई थी। अमन ने सोच लिया था कि वो उस बावर्ची का ऐसा हाल करेगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। अमन ने एकदम सफेद कपड़े पहन लिए थे, करिश्मा जी और अमरेंद्र जी ने भी सफेद कपड़े पहन लिए थे, और जल्दी ही अमन उस सफेद दरवाजे के अंदर जाकर कड़ा तप करना शुरू कर दिया। अमन के वरदान के कारण उसके जादुई बावर्ची सब उसके बुलावे पर आ गए थे, क्योंकि जिन महाराज पहले ही सातों बावर्चियों के मन में ये बात डाल चुके थे कि जिन्नातों की दावत का वक्त आ गया है। और अब चूंकि अमन ने उन्हें बुलाया था, देखते ही देखते सातों बावर्ची अपनी अपनी हालत में अमन के पास आकर खड़े हो गए। अमन ने एक एक करके अपने सातों बावर्चियों को देखना शुरू कर दिया और अब उसे उनमें से वो बावर्ची पहचानना था जो इंसानी मांस खाता था, जिस जिनको इंसानी मांस खाने की आदत लगी थी। अमन सीधे सीधे उनसे सवाल नहीं कर सकता था, क्योंकि वे कई सौ सालों से जिन्नातों के लिए खाना बना रहे थे। इसलिए अमन को धैर्य से काम लेना था ताकि वो उस बावर्ची की पहचान कर सके। इसीलिए अमन ने उनके आते ही कहना शुरू कर दिया, जिन्नातों की यहाँ दावत होने वाली है, इसलिए तुम्हें खाना बनाना शुरू करना होगा, वो भी आज से ही। और एक और बात, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, और वो क्या है वो मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगा। ऐसा कहकर उसने अपने जिन बावर्चियों को खाना बनाने के लिए कह दिया और खुद बेसब्री से दावत का इंतजार करने लगा, क्योंकि दादा महाराज के अनुसार उसकी प्यारी पत्नी तारा उस दावत में उसे मिलने वाली थी। वहीं दूसरी ओर तारापरी फल खाने के कुछ ही समय बाद अमन के उस बगीचे में पहुंच चुकी थी जहां वो पहली बार आई थी। बगीचे में आकर तारापरी को बहुत खुशी हो रही थी और उसने प्यार से हरेक फूल को देखना शुरू कर दिया। वो इस बात का एहसास करना चाहती थी कि वो वाकई इस धरती पर वापस आ चुकी है। तारापरी की खुशी उसकी आंखों से झलक रही थी। वहां जाकर उसने दादा महाराज को प्रणाम किया और दादा महाराज ने जैसे ही तारापरी को देखा, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव दिखाई देने लगे और तारापरी की ओर देखकर कहने लगे, तारापरी तुम्हारा एक बार फिर पृथ्वी पर स्वागत है। जैसे ही दादा महाराज ने ये कहा, तारापरी मुस्कुराई और कहने लगी, दादा महाराज अब आप मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए। जैसे ही तारापरी ने ये कहा, अचानक दादा महाराज कुछ परेशान से हो गए। तुम्हारा बच्चा तो हमने सोनल परी को दिया है, क्योंकि अमन यहाँ अपने माता पिता के साथ आया था और अगर अमन बच्चे की खुशबू महसूस कर लेता तो उसे सारा सच पता चल जाता, इसलिए हमने सोनल परी को बच्चा देकर कुछ समय के लिए गायब होने के लिए कह दिया था। लेकिन सोनल परी अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई है? जैसे ही दादा महाराज ने ये कहा, तारापरी परेशान हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं? सोनल परी के पास मेरा बच्चा है, लेकिन कहाँ है सोनल और मेरा बच्चा? दादा महाराज पता कीजिए, आप अच्छी तरह जानते हैं अगर मेरा बच्चा काली शक्तियों के हाथ लग गया तो क्या हो सकता है। तभी दादा महाराज ने अपनी आंखें बंद करके सोनल परी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे, क्योंकि उस वक्त काली शक्तियों के मालिक अमित और मल्लिका सोनल परी के साथ थे। उन्होंने काव्या रूप में सोनल परी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था।
जब काव्या को अस्पताल ले जाया गया तब वे लोग भी उसके पीछे पीछे अस्पताल पहुंच गए थे, जिसकी वजह से अब दादा महाराज सोनल परी का पता नहीं लगा पा रहे थे। उन्होंने तारा परी से कहा, बेटा, सोनल परी का हमें कुछ पता नहीं लग पा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में है। तुम एक काम करो, तुम अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा उससे मन ही मन बात करने की कोशिश करो, हो सकता है कि तुम्हारी बात उसके मन तक पहुंच जाए। जैसे ही दादा महाराज ने हुक्म दिया, तारा परी ने जल्दी ही सोनल परी से बात करना शुरू कर दिया। सोनल परी, जो उस वक्त अस्पताल के एक बेड पर लेटी हुई थी और एक हाथ से जिन्नातों के वंशज को लॉकेट के ऊपर से पकड़े हुए थी, उसे तारा की बात करने का आभास हुआ, लेकिन उस वक्त मलिका और अमित उसके बेहद करीब थे, इसलिए उसने मन ही मन में तारा से कहना शुरू कर दिया कि वो इस वक्त अस्पताल में है। काली शक्तियों का मालिक अमित और वो बदसूरत बुढ़िया मलिका उसके बेहद करीब हैं, इसलिए वो चाहकर भी वापस नहीं आ पा रही है। अब तारा काफी हैरान हो गई और कहने लगी, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर तारा परी ने जल्दी ही एक अधेड़ उम्र की औरत का वेश धारण कर लिया, क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, और दादा महाराज की ओर देखकर कहने लगी, सोनल और मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर जल्दी ही तारा परी गायब होकर अस्पताल के ठीक सामने खड़ी हो गई। सोनल परी अब खुद को थोड़ा शांत महसूस करने लगी। वो अच्छी तरह जानती थी कि जैसे ही तारा वहां आएगी वो उसे लॉकेट दे देगी, और उसके बाद दादा महाराज अपने कड़े मंत्रों के उच्चारण के साथ जिन्नातों के वंशज को तारा परी के पेट में प्रवेश करा देंगे, और एक बार फिर तारा परी जिन्नातों के वंशज की शक्तियों का ग्रहण कर लेगी। सोनल परी को बेसब्री से तारा के आने का इंतजार था, लेकिन मलिका और अमित काव्या को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। अमित जानना चाहता था कि आखिरकार काव्या उस दिन अमन के ऑफिस में क्यों आई थी, उस दिन असल में क्या हुआ था, ये बात उसे अभी तक पता नहीं लग पाई थी, और मलिका जानना चाहती थी कि काव्या उस दिन उस पर क्यों हंसी थी। मलिका को शक हुआ था कि कहीं काव्या ने उसका असली रूप तो नहीं देख लिया है। जिस तरह से वो उस पर हंसी थी, उसे यही लग रहा था कि कहीं उसने उसका बुढ़िया वाला रूप तो नहीं देख लिया है।
वो दोनों अपने अपने तरीके से काव्या की सच्चाई पता लगाना चाहते थे, लेकिन काव्या मजनू होने का नाटक करने लगी। वो जानती थी कि उसे अपने सिर और हाथों पर लगी चोटों पर पट्टी करवानी होगी, क्योंकि उसकी चोटें अपने आप ठीक हो जाएंगी। परियों के जैसे जो भी घाव लगता था वो ज्यादा देर नहीं रहता था और जल्दी ही ठीक हो जाता था, इसीलिए काव्या जोर से चिल्लाने लगी, प्लीज डॉक्टर जल्दी आइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी ड्रेसिंग कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। डॉक्टर जो बाकी मरीजों को देख रहे थे जल्दी ही उसके पास आ गए। मैडम, आपको ज्यादा चोट नहीं लगी है, केवल छोटी सी खरूचे हैं, और आप इतना ज्यादा चिल्ला रही हैं, काव्या ने डॉक्टर की ओर घूरते हुए कहा। चोट मुझे लगी है या आपको? मैंने कहा है ना कि मुझे दर्द हो रहा है, तो आपको मेरे पास आना चाहिए और फटाफट मेरी ड्रेसिंग करनी चाहिए। शायद आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, शायद आपने मेरे शोज भी देखे होंगे, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात। जैसे ही काव्या ने अपने रिपोर्टर होने का पेशा सबके सामने बताया, सब थोड़े हैरान हो गए। अमित को अब उसका जवाब मिल चुका था, उसे लगा कि उसे अब यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। रिपोर्टर क्या थे क्या नहीं, उनकी क्या पावर थी, ये अमित अच्छी तरह जानता था। भले ही उसके पास कितनी ही काली शक्तियां क्यों ना हों, लेकिन कलम की शक्ति की ताकत का अंदाजा उसे अच्छी तरह था। और तभी उसने मलिका की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। मलिका ने काव्या को एक नज़र देखते हुए अमित से कहा, लेकिन मालिक, पता नहीं क्यों मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लगती है, ऐसा लग रहा है जैसी ये दिख रही है वैसी ये नहीं है, जरूर इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और देखिए, इस लड़की को एक्सीडेंट हुए कितनी देर हो गई है, और अभी तक इसके घर से कोई नहीं आया है, और ना ही इस लड़की ने किसी को फोन करने की कोशिश की है। जैसे ही मलिका ने ये कहा, अमित भी कुछ सोचने लगा और कहने लगा, शायद तुम ठीक कह रही हो, कुछ ना कुछ तो इस लड़की के साथ ऐसा है जिसकी वजह से मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर को अब पता चल चुका था कि काव्या एक क्राइम रिपोर्टर है और उसे इस तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते। काव्या का नाम याद आते ही उन्हें ये भी पता चल गया था कि ये वही है जो क्राइम स्टोरी विद प्रूफ लोगों के सामने पेश करती है, इसीलिए डॉक्टर ने जल्दी से अपनी नर्स को उसकी ड्रेसिंग करने के लिए कह दिया। सोनल परी जल्द से जल्द अपने घाव पर पट्टियां लगवाना चाहती थी ताकि उसके ठीक हो चुके घाव किसी को भी दिखाई ना दे। वो जानती थी कि अगर उसके घाव इस तरह से अमित और मलिका के सामने ठीक हो गए तो उन्हें शक हो जाएगा कि ये कोई आम लड़की नहीं है। काव्या के घाव पर पट्टी हो ही रही थी कि तभी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत काव्या की ओर रोते हुए बढ़ने लगी। अरे मेरे बच्चे, ये क्या हो गया, ये तेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया, कहाँ चोट लगी, बेटा तू ठीक तो है, ऐसा कहकर बूढ़ी औरत बिना आंसुओं के रोने लगी। क्या वक्त रहते तारा परी जिन्नातों के वंशज के साथ बगीचे पहुंच जाएगी? क्या अमन मांस खाने वाले जादुई बावर्ची को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।